शांति ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के सिकिलधे बच्चों का, बाबा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, चारों धाम की भूमि पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे मध्य आदरणीय निर्मला दीदी जी उपस्थित हैं, सभी एक हाथ की ताली से दादी जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय निर्मला दीदी जी, हमारे साकार मम्मा बाबा के हाथों से पालना लिए हुए यज्ञ के बहुत अनन्य रत्न हैं, ईश्वरीय सेवाओं के आधार मूर्त हैं और विशेष रूप से विदेश सेवा में आपका मुख्य पाठ रहा है। आप 1962 में ज्ञान में आए मुंबई में, तब आप मेडिकल की पढ़ाई पढ़ चुके थे, आप गायनेकोलॉजिस्ट पढ़ रहे थे, हाँ पढ़ चुके थे, और गायनेकोलॉजिस्ट एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आप प्रैक्टिस करते थे। वहां ही 10 साल आपने दोनों सेवाएं की, मेडिकल की सेवाएं भी की, ईश्वरीय सेवाएं भी की। और उसके बाद 1971 में लंदन में जब पहली बार विदेश सेवा शुरू हुई, तब आप रतन मोहिनी दादी जी के साथ वहां सेवा के लिए गए, और फिर लगभग 10 पांच भाई बहनों के साथ, हाँ दादी जी दीदी जी पांच भाई, हमें तो पूरा नहीं इतना मालूम है, लेकिन जो मैं जानती थी तो दीदी ने बताया, पांच भाई बहनों के साथ पहली बार 1971 में आप लंदन में गए, और फिर रतन मोहिनी दादी जी बाद में पहुंचे, और करीब 10 साल आप उस समय ईस्ट अफ्रीका, मॉरिशस, ये सब मिलाकर के वहां सेवाएं करते रहे। ऑस्ट्रेलिया आए दीदी 1978 में, और तब से आपने साउथ ईस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक रीजन में अपनी सेवाओं का विस्तार किया, और अब प्रेजेंटली करीब 15 देशों में 130 सेवा केंद्र हैं और 4 रिट्रीट सेंटर हैं जिसके आप डायरेक्टर हैं। ज्ञान सरोवर के भी आप डायरेक्टर हैं, अपना जो ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी दीदी जी इतने देशों के जो अपने सेवा केंद्र हैं, खासकर साउथ ईस्ट एशिया के, उनके भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। पूरे 5 कॉन्टिनेंट्स में 72 से भी अधिक देशों की यात्रा अपने ईश्वरीय सेवाओं के लिए, लोगों को बाबा का संदेश देने के लिए की हैं। मैं दीदी के लिए कहूंगी, पर्वत में अटलता देखी है, जल में निर्मलता देखी है, चंदन में शीतलता देखी है, हरेक में कोई ना कोई विशेषता होती है, लेकिन ये सब विशेषताएं दीदी जी आप में देखी हैं। बाबा भी दीदी को मुरलियों में याद करते रहे, निर्मल आश्रम करके हम साकार मुरली में बहुत बार बाबा से सुनते हैं, तो हम भक्ति का लक्ष्य और उद्देश्य, आप क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं इस भक्ति में, किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो प्रेरणाएं हम आदरणीय दीदी से लेंगे।
ओम शांति। देखो आपको बाबा ने ये गोल्डन चांस दिया है, क्योंकि पांडव भवन की भट्टी के लिए लंबी क्यू लगती है और आपको चांस मिल गया, तो आप अपने आप को लकी समझना। क्यों? ये बाबा की कर्म भूमि है और यहाँ 60 साल से अधिक तपस्या चल रही, तो इसलिए तपस्या का वातावरण है। जो भी यहाँ आते हैं इतना अच्छा अनुभव करके जाते हैं, नए नए भी बाबा के कमरे में जाते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं जैसे बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो आपको तो देखना है कि आप यहाँ पूरा लाभ लो, ठीक है ना? अच्छा, आप में से 20 साल के ऊपर कौन है, जरा हाथ उठा लो। अच्छा, 15 और 20 साल के बीच में 10 से 15, 5 से 10, 1 से 5, 1 से अंडर कोई है? 1 साल पूरा ना किया हो, पहली बारी आया है? 1-2 है जो 1 पहली बारी आए हैं मधुबन में। अच्छा, तो देखो गिने चुने को चांस मिलता है, तो इसलिए लक्ष्य रखना यहां से हमें पूरी शक्ति भर के जानी, जो भी हमारी कमजोरी है स्वाहा करके जानी है। वहां राखी मनाई है या यहां मनाएंगे? अच्छा, तो राखी के दिन प्रतिज्ञा करना, जो कमजोरी छोड़नी है छोड़ के जाना, लेके नहीं जाना। प्रतिज्ञा करेंगे तो बाबा की मदद मिलेंगी। तो इसलिए भट्टी में आए हैं पूरा पक कर जाना, जो कच्चे होते हैं वो क्या होगा, टूट फूट जाएंगे। ब्राह्मण जीवन का भी त्याग कर सकते हैं, पर पक्के हैं तो क्या होगा, बाबा कहते हैं जो सपूत बच्चे हैं बाबा के गले का हार बनते हैं, जो सोतेले हैं बाबा में निश्चय नहीं या कुसंग में आते हैं तो क्या होते हैं, निश्चय नहीं तो मर्यादाओं पर चलते नहीं तो माया कच्चा खा जाएंगे। इसलिए माया से हम हार ना खाएं, इसके लिए पूरी प्रतिज्ञा करनी है। तो यहां कोशिश करके मौन में रहना, घर में एक बारी फोन कर दो हम कुशल पहुंच गए हैं, पीछे फोन बंद, कहो 3 दिन के लिए हम मर गए हैं। बाबा के घर में जिंदे जी मर गए हैं। तीन दिन के बाद आपसे फोन करेंगे और जितना आपस में भी मौन की बातें करो, धीरे आवाज से बोलो, आपस में भी बड़े आवाज से नहीं बोलो और लौकिक लेन देन बिल्कुल नहीं करो। घर में क्या है, सासु बहु कैसे हैं, बेटा कैसा है, बहू कैसी है, क्योंकि मोस्टली बुजुर्ग लोग सामने देखने में आते हैं, बहू कैसी है, क्या करती है, सब यहाँ भूल जाओ। बाबा आज भी कहा, देह को भी भूलो, देह के संबंधियों को भी भूलो, चाहे अच्छे है तो ममत्व रहता है, चाहे बुरे हैं तो मन में तिरस्कार घृणा रहती है, कुछ ना नेगेटिव भाव रहे न ममत्व रहे, ये ध्यान रखना है। यहाँ के लिए नहीं, हमेशा के लिए। इसलिए ममत्व है तो ममत्व का दान दे देना, और नेगेटिव भाव है, झगड़ा लड़ाई छिटपिट होती है, वो भी यहाँ छोड़ दो। कहो हमको किसी की बुराई देखनी नहीं है, बुरे शब्द सुनने नहीं है, बाबा की याद में। बाबा ने कहा है बुरा मत सुनो, एक काम से सुनकर दूसरे से निकाल दो, दिल तक नहीं ले जाना, नहीं तो दिल को दुख होगा। दूसरा ये लक्ष्य रखना, अमृत वेला हमारा पावरफुल हो, नियम से नहीं आके बैठना, लक्ष्य लेके कि आज मुझे अमृत वेले में क्या फायदा लेना बाबा से, क्योंकि यदि अपनी कमजोरी मालूम है तो उल्टी शक्ति लेनी पड़ेगी। जिसमें क्रोध है उसको कौन सी शक्ति लेनी है, शांति की। और क्रोध क्यों आता है, कौन सी शक्ति की कमी है, सहनशीलता की कमी है ना, हम सहन नहीं कर सकते उसकी कमी कमजोरी। हम समझते हैं हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, हमने एक बार कहा करना चाहिए, क्यों नहीं किया, चलो एक बार माफ किया, दोबारा माफ किया, अभी सहन नहीं होता है। तो सहन शक्ति की कमी है, धीरज की कमी है। देखो हमको ज्ञान में इतने साल हुए, हमारा परिवर्तन नहीं हुआ, क्रोध नहीं छूटा, और उनको ज्ञान नहीं है। हम चाहते हैं कि हमने एक बार कहा और बदल जाए, तो क्या हुआ, अपनी कमी हुई ना। तो इसलिए समझना है ये हमारी कमी है, धीरज की कमी है, सहनशीलता की कमी है, अहम है कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, मैं मालकिन हूँ, ये नौकर है, मैं माँ हूँ, ये मेरे बच्चे हैं। तो अपेक्षा नहीं रखो, बाबा ने हमें जो है जैसे है स्वीकार किया ना, तो स्वीकार कर लो। तो इसलिए अपने में देखो, सहनशीलता की कमी है, लोभ क्यों आता है, लोभ किसको होता है, उसकी ऑपोजिट शक्ति कौन सी है, संतुष्टता। जो जो लोभी है संतुष्ट नहीं है, जो संतुष्ट है उसको लोभ नहीं। और संतुष्ट कैसे रह सकते हैं? जब बुद्धि में प्राप्ति मालूम है, बाबा ने कितने खजाने दिए हैं हमको, जब ये बुद्धि में रहेगा कि बाबा ने इतने खजाने दिए, अब ये धन दौलत तो विनाशी है उसके लिए, जो झूठ बोले, चोरी करे, पाप करे, ठगी करे। इसलिए अपने में संतुष्टता की शक्ति बढ़ाओ, खजाने को देखो। मोह क्यों होता है? मोह क्यों है? मोह का ऑपोजिट क्या है? शुद्ध प्यार। तो मोह क्यों होता है? मेरा। इसलिए बाबा ने कहा मेरेपन को छोड़ो। और अहम क्यों आता है? हाँ, देहभान के कारण। पर उसमें भी स्पेशल क्या है? अपनी विशेषता को देखकर हमको अहम होता है कि मैं अनुभवी हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं ये कर सकती हूं, वो कर सकती हूं, एक्सपर्ट हूं, मैनेजर हूं, पोजीशन का नशा होता है। तो अहम का ऑपोजिट क्या है? क्या धारण करना है? कौन सी शक्ति? नम्रता। नम्रता। और नम्रता कैसे आएंगी? जब समझेंगे बाबा ने मुझे ये विशेषता दी। देखो, आज किसी को बच्चे होते हैं तो कोई पूछता है कितने बच्चे हैं तो क्या कहेंगे? भगवान ने दिए। कितना धन? भगवान ने दिया। तो विशेषताएं भी तो बाबा ने दी है। तो इसलिए ये समझो, बाबा ने आपको ज्ञान आने के बाद आप मीठे बन गए, प्रेम स्वरूप बन गए, ज्ञानी बन गए, योगी बन गए, तो कोई न कोई आके प्रशंसा करेगा, बहन जी आप तो बहुत अच्छा संज्ञान सुनाती हो, आप तो अच्छा योग सिखाती हो, आप योग कराते हो, तो हमें तो साक्षात्कार हो जाता है, तो आपकी प्रशंसा करेंगे। तो ये समझना है ना कि ये तो बाबा की ताकत है, बाबा साक्षात्कार कराता है, हम तो निमित्त है। तो निमित्त भाव होने से नम्रता रहेंगे। और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या क्यों होती है? ईर्ष्या क्यों है? किसको होती है ईर्ष्या? जिसमें स्वमान की कमी है। स्वमान की कमी है तो दूसरों की प्रशंसा होती है, तो ईर्ष्या होती है कि इसकी क्यों बढ़ाई करते हैं लोग, मेरी क्यों बढ़ाई नहीं करते। तो इसलिए स्वमान में रहो। ये बाबा ने आपको स्वीकार किया, तो जितना स्वमान में रहेंगे और जितना स्नेह स्वरूप रहेंगे, क्योंकि स्नेह है जिससे उसकी प्रशंसा होती है तो खुश होते हैं ना। देखो, आपके बच्चे की कोई प्रशंसा करेंगे आपको ईर्ष्या आएंगे? मेरा बच्चा है तो मेरे से स्नेह है, तो और भी आपको नशा रहेगा कि मेरे बच्चा ऐसा है ऐसा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सब हमारे हैं, सबसे स्नेह हो, बेहद का परिवार है। फिर द्वेष क्यों आता है, वैर भाव क्यों होता है? कोई निंदा करता है, कोई हमको विरोध करता है, नुकसान करता है, तो वैर भाव होता है। बाबा क्या कहते हैं, उसको दुश्मन नहीं समझो, क्या समझना है, मित्र समझो। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। तो इसलिए हर एक के प्रति मैत्री भावना रखो और आलस्य। आलस्य क्यों आता है, क्या गुण धारण करना है तो आलस्य नहीं आएगा। इसको उमंग उल्लास है ना, खुशी है, तो आलस्य नहीं आएगा। उमंग उल्लास नहीं है, कहेंगे दूसरा कोई करेगा, उसकी ड्यूटी है ना, मैं क्यों करूं, थकावट है, फिर बहानेबाजी करेंगे, अमृत वेला कहेंगे आज तो थके हुए हैं, चलो सारा दिन तो योग लगाना ही है, तो इसलिए उठते नहीं अमृत वेला। तो ये नहीं, वैल्यू हो अपने समय की, अपनी कर्मयोग की। मैं करूंगी तो मुझे मिलेगा, दूसरे करेंगे तो उनको प्राप्त होगा, तो मुझे मेरा वर्षा लेना है, क्यों नहीं मैं पुरुषार्थ करूं, क्यों नहीं मैं थोड़ी मेहनत करूं, तो आलस्य नहीं है। और अलबेले बन जाते हैं, क्यों अलबेले होते हैं, होगा करेंगे देखेंगे सोचेंगे करते रहते हैं। करना किसको है, मुझे बाबा ने स्लोगन दिया है, कल करना है सो आज करो, आज करना है सो आप करो, कल के ऊपर नहीं रखो, कल कल करते काल खा जाएगा। इसलिए करेंगे सोचेंगे देखेंगे नहीं, करना ही है, करके ही छोड़ेंगे। तो समय शक्ति संकल्प की वैल्यू हो ना, तो समय नहीं गंवाएंगे। तो इस रीत से यहां जो अमृत वेले में शक्ति लो, ताकि वो कमजोरी ना रहे, और बीज रूप स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि अमृत वेला हमारी कमाई करना है। इसलिए नियम से नहीं बैठो, अपने को अलर्ट करके बैठो, ताकि झुटके ना आए, और आंखें बंद नहीं करो, क्योंकि आंखें बंद हो दे से क्या होता है, नींद का नशा चढ़ जाता है। तो आंखें खुली रखो, और मेरी कमाई का समय है, क्योंकि इस समय बाबा से कनेक्शन ठीक लगेगा, हमारी एकाग्रता अच्छी रहेगी। और बाबा कहता है 5:30 बजे के बाद तो मेरे पास भक्तों की बहुत क्यू लग जाती है, इसलिए 2 बजे से 5 बजे तक अमृत वेले का टाइम है, तो उस समय कमाई करो। उसमें ढीलापन ना हो। तो सारा दिन क्या करना है, कर्मयोग। घर में भी रहते हो, कामकाज भी करना होता है, करो बाबा की याद। खाना पकाओ बाबा की याद, खाना खाओ बाबा की याद में, तो चलते फिरते बाबा को याद करते रहो। और अपने को फरिश्ता समझ कर चलो, देवान भूल के। अपने को लाइट का सूक्ष्म शरीरधारी समझ कर चलो, तो बाह्य मुक्ता से अपने आप को सारा समय अंतर्मुख होकर रखो, ताकि हमारा ध्यान बाहर रह जाए। नहीं तो क्या होगा, सब ध्यान जाएगा, इसने क्या कपड़ा पहना है, ये क्या खाती है, क्या बोलती है, क्या करती है, आदि आदि। इसलिए अंतर्मुख होकर रहो, भाई भाई की दृष्टिपत्ति हो, लौकिक को भी देखो भाई भाई की दृष्टि। तो सिर्फ यहां नहीं, घरों में भी ये हमको ध्यान रखना। फिर मुरली का टाइम है, कौन मुरली रोज पढ़ते हैं या सुनते हैं, रोज ब्रेकफास्ट के पहले कौन सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो क्या है, बाबा कहते हैं पहले मन को खुराक दो फिर शरीर को खुराक। जो कहते हैं मुरली के लिए टाइम नहीं है, उसका मतलब मुरली से प्यार नहीं है। मुरली जो हमारा हीरे जैसा जीवन बनाती है, उसे कितना प्यार होना चाहिए। बाबा कहते हैं गोपिकाएं मुरली के लिए तड़पती है, उनको रोज भेजनी पड़ती है, टेप द्वारा भेजते थे उन दिनों में, और आपके पास तो फोन में पीस ऑफ माइंड चैनल में आ जाती है। कितना सहज कर दिया है बाबा ने। तो इसलिए लक्ष्य रखना है, मुरली भी ध्यान से सुननी है, नियम से नहीं। भक्ति में क्या करते थे, गीता पढ़ जाते थे, एक अध्याय का नियम है भागवत का, गीता का, जिसका भी, रामायण का, पढ़ जाते थे, समझो न समझो, चलो न चलो, समझते थे, हमने आज का अध्याय पूरा किया। अभी बाबा कहते हैं मुरली भी ऐसे नहीं कि चलो घर का काम करते करते मुरली सुन ली, नहीं, एकाग्र होके सुनो, पॉइंट्स लिखो, आज क्या क्या मनन चिंतन करना है, स्पेशली यहां याद रखना है, हमारी स्टूडेंट्स लाइफ है, तीन दिन पक्का स्टूडेंट, गृहस्थी नहीं, तो इसलिए मुरली की पॉइंट्स लिखो। नोट्स वगैरह कोई लाए हैं या नहीं डायरी अपनी, तो डायरी के विगत का क्लास में नहीं जाना, पॉइंट्स लिखो, हाँ, मंथन करो, मनन करो, धारण करो। क्योंकि बाबा कहते हैं मुरली का एक एक शब्द लाखों रुपयों बराबर है, इसलिए उस पर बहुत ध्यान देना है। और घर में भी बैलेंस रखना, लौकिक अलौकिक काम, विशेष जिनको छोटे बच्चे हैं, ध्यान रखना है कि बच्चों को टाइम पर खाना मिलता है, घर वालों को टाइम पर खाना मिलता है, और पूरी जिम्मेवारी निभानी है। बुजुर्ग हो गए है, बहू है, चलो उसको देव संभाल ले, फिर किटपिट नहीं करो कि ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, क्योंकि नहीं तो सासु की आदत होती है ना, समझती है हमको ऐसे ही घर चलाना है, बहू को हमारे जैसा ही घर चला, छोड़ो जो करे करने दो, सिर्फ अपना ध्यान रखना, हम किसी को दुख ना देवें, क्योंकि घड़ी घड़ी कहने से क्या होता है, संबंध खराब हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं समझदार बन के रहना है, न घर वालों को ज्ञान की भू भू ऐसे नहीं करना है, उनको इंटरेस्ट है तो बोलो, अपने जीवन से प्रभावित करो, क्योंकि कई घर वाले कहेंगे अभी सुना तुम्हारा ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान, छोड़ो तुम पढ़ो मुरली, तो इसलिए इंसल्ट करे ऐसे घर वालों को, मुरली नहीं सुनानी है, ज्ञान नहीं देना है, परंतु घर में अपनी धारणा से, अपनी शांति से, प्रेम से, मिठास से सबको वश करना है, क्योंकि आपका जीवन से प्रभावित होंगे तो एक न एक दिन ज्ञान में आएंगे, परंतु खिटपिट से फिर कहेंगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम जानो बाबा जानो, न क्रोध करेंगे तो क्या कहेंगे, ओम शांति में जाती है, ओम शांति करती है, शांत कहाँ है, तो इसलिए देखना है कि ओम शांति का, ब्रह्मा कुमारियों का, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, रात को जाग लिखना है, वहां कोई चार्ट लिखते हैं, रोज लिखते हैं कोई एक दो, अच्छा वहां तो टाइम नहीं मिलता है, यहाँ इन्हों का सेशन कितने बजे पूरा होता है, 9:30 या 7:30, हाँ 9:45 तक चलता, सवेरे 4 बजे से चलता है, तो टाइम ही नहीं, सिर्फ दिन में रेस्ट का टाइम मिलता है, अच्छा तो यहाँ भी क्या करो, सवेरे 4 बजे उठते हैं ना, तो 4:45 से तो 7 बजे तक फ्री होते हैं ना, तो उसमें चार्ट लिखो, या तो रात को चार्ट लिखो, लिखो चार्ट कि आज सारे दिन में मेरा अमृत वेला पावरफुल रहा, मुरली मैंने ध्यान से पढ़ी, सारे दिन में किस पॉइंट का ध्यान किया, कौन सी पॉइंट मैंने धारण की, सारे दिन में मेरी भाई भाई की दृष्टि रही, फरिश्ता रूप रहा, तो सारे दिन की अपनी दिनचर्या देखनी है, मौन में रही, दुनिया विसंकल्प तो परिवार का नहीं आया, चेक करना अपने आप को, और किसी को भी प्रति मन में नेगेटिव भाव तो नहीं रहा, क्योंकि बाबा कहते हैं मनसा भी नेगेटिविटी ना हो, वाचा भी नहीं तो कर्मणा भी नहीं, किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि वाचा से भी दुख देख सकते हैं, मनसा से भी दुख देख सकते हैं ना, देखो आपके मन में गुस्सा होगा तो चेहरा कैसा होगा, सामने वाला समझ जाएगा ना कि इसको गुस्सा है, और घर वाले क्या करेंगे, दूर भागेंगे। क्या आज इनका मूड खराब नहीं है ना, कभी भी चिल्लाएंगे तो दूर रहेंगे। इसलिए मनसा भी किसी के प्रति गुस्सा ना हो, वाचा में भी ना हो, तो कर्मणा की तो बात ही छोड़ो। क्योंकि शुरू शुरू में बाबा कहते थे चलो कर्मणा में नहीं आओ, पर अभी तो बाबा कहते हैं अपनी मनसा पर भी ध्यान रखो। तो इसलिए आपकी मनसा भी सारे दिन की यहां चेक करो कि मन में और तो कोई संकल्प नहीं आया, एक बाबा बाबा करते रहे तो जितना बाबा के लिए प्यार होगा याद सहज, जितना आत्मिक बान में रहेंगे याद सहज, जितनी मर्यादाओं पर चलेंगे याद और पवित्रता सहज हो जाएंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य है निराकारी, निराहंकारी, निर्विकारी बनना। तो याद में हमें अंतर्मुखता मदद करेंगे। तो अंतर्मुख होकर भाई भाई की दृष्टि से सारा दिन रहेंगे आत्मिक स्मृति में, तो जब भी बैठेंगे याद सहज हो जाएगी। तो अभी देखना कि याद में भी यहां है, तो जब बैठते हैं तो अपने को चेक करना है कि हमारा मन को हम जब ऑर्डर करें, हमारा मन ऑर्डर मानता है। क्योंकि बाबा कहते हैं तीन लोग की यात्रा करो, कभी साकारी, कभी आकारी, कभी निराकार, उस वतन में पहुंच जा, तीनों लोग का सैर करो और मन को ऑर्डर करो, देखो उस लोक में जाता है या नहीं। तो अपनी चेकिंग करनी है कि मन को ऑर्डर किया और जाओ, ऐसे नहीं सारा दिन ज्ञान का मंथन करते रहे, सारा दिन बाबा से बातचीत करते रहे। नहीं, कभी ब्रह्मापुरी में जाओ, कभी विष्णुपुरी में जाओ, कभी शंकरपुरी में जाकर तपस्या करो। और एम रखना है बीज रूप स्थिति में, बिंदु बन बिंदु बाप को याद कर, और फालतू संकल्पों को बिंदु लगाओ, फुल स्टॉप। अभी समय नहीं है, मन को ऑर्डर करो, अभी मैं योग में बैठी हूं, पास्ट की बातें नहीं चिंतनी है और भविष्य के लिए सोचना नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना है, मैं और बाबा, तीसरा न कोई। तो जितना बाबा की याद में मगन हो जाएंगे तो यहां का अभ्यास क्या होगा, आपको सारा साल मदद करेगा। और आप देखेंगे आपकी उन्नति होती जाती है। तो याद से क्या होगा, याद से क्या फायदे होंगे, विकर्म विनाश होंगे और क्या होगा, खुशी होंगी और क्या, हाँ हाँ तंदुरुस्ती बढ़ेंगी, आयु बढ़ेंगी और क्या होगा, हल्के रहेंगे, वो तो विकर्म विनाश होगा तो हल्के रहेंगे और हल्के होंगे तो याद में उड़ेंगे, ठीक है ना। पहले तो हल्का बनना है, मैं आत्मा हूँ तो आत्मा हल्की है, शरीर हूँ तो शरीर भारी है, तो आत्मा बन के बैठना है और उठते रहना और एकाग्र मन को करना और जितना समय मिले, यहाँ तो आपको अच्छा है, कभी बाबा की झोपड़ी में जाओ, कभी शांति स्तंभ पर बैठो, कभी हिस्ट्री हॉल में बैठो, तो चारों धाम की यात्रा करो, झोपड़ी में जाओ, परंतु झोपड़ी और बाबा के रूम में क्या है, टाइम के लिमिट है, ज्यादा नहीं बैठना है, क्योंकि जिस समय दूसरों को भी चांस देना है विशेष, जब फ्री है बाबा का रूम भले बैठो, पर जब सब लोग आते जाते हैं उस समय ज्यादा समय नहीं बैठ सकते हैं, परंतु बारिश नहीं है, खुला है, तो टावर के पास भी बैठ सकते हो, शांति स्तंभ के पास, हिस्ट्री हॉल में बैठ सकते हैं, और यहाँ तो है ही आपका मुकर स्थान, अमृत वेला भी यहाँ आऊंगा, सिर्फ मुरली में ओम शांति भवन जाएंगे, बाकी सारा दिन यहाँ होगा, तो इसलिए लक्ष्य रखना कि सारा दिन बाबा की याद रहे और जितना हो सके यहाँ हमको कमाई करनी है। रक्षाबंधन का भी तो बाबा हमें मुख्य यही संदेश देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, तो पवित्र रहते हो तब तो आपको यहाँ आने की छुट्टी मिली है, ठीक है ना। परंतु अभी संपूर्ण पवित्रता पर ध्यान रखना, सिर्फ ब्रह्मचर्य बने, ब्रह्मचर्य पालन करना, तो मैं समझती हूँ ज्यादातर ब्राह्मणों को सहज हो गया, बाप को जाना, बाबा की शिक्षा मिली और हम ब्रह्मचारी बन गए। जिन्हों को भी तकलीफ हुई क्या किया, खूब सामना किया, कितनों को तकलीफ हुई ब्रह्मचारी रहने में, हाथ उठाओ, दो चार है, हाँ शुरू शुरू में तो बहुतों को तकलीफ होती थी, उसमें भी पंजाब में तो बहुत सामना करना पड़ा, कुमारियों को घर में आने नहीं देते थे, यदि क्लास में गई घर के दरवाजे बंद, ठंडी में बाहर ही खड़े रहो, और कई कुमारी को तो क्या किया, एक बाप ने उसके हाथ पर खटिया रखी, खटिया का पांव, और खुद उसके खटिया पर बैठ गया, और कईयों का कहा बाहर जाएंगी समर माँ को मैं अब तुम्हारा हाथ पांव काप दूंगा, तो माँ बाप इतने स्पेशली बाप इतना कड़ा होता था। और अमृतसर में तो बहुत हल्ला किया, मम्मा थी, और 100 का झुंड पहुंच गया सवेरे 7 बजे के पहले सेंटर पर, दरवाजा खोलो मम्मा को मिलना। उन्होंने कहा मुरली के बाद मिलना, अभी तो मुरली का टाइम है, नहीं हमको अभी मिलना। दरवाजा ठोकते रहे, आखिर मम्मा के पास 5-7 को ले गए, और मम्मा तो योग में बैठी थी, वो आकर उसके सामने योग में बैठ गए शांति से। तो योग का इतना प्रभाव है कि आप औरों को शांत कर सकते, तब कहेंगे शांति की देवी। बाबा कहते हैं आपको शांति देव शांति देवा बनना है, हर एक को शांति का नाम देना, खुद को तो शांत नहीं होना है पर और भी आपके सामने आकर शांत हो जाए, उसको कितना भी गुस्सा हो शांत हो जाए, तब कहेंगे आप शांति की देवी हैं। देखो जड़ मूर्तियों के सामने हम जाते हैं क्या होता है, जड़ मूर्तियां भी हमको कितनी शांति देती है, कितना सुख मिलता है, कितनी शक्ति मिलती है। तो हम बाबा कहते हैं चैतन्य शिव शक्ति हो, तो उस अभी स्मृति से अपने को चलना है। मैं साधारण सासू नहीं हूं, बहू नहीं हूं, बेटी नहीं हूं, पति नहीं हूं, बेटा नहीं हूं, मैं शिव शक्ति पांडव हूं। आज बाबा ने क्या कहा, मैं क्या बनाता हूं आपको, हाँ कौन सी रहम करते हैं बाबा हमारे ऊपर, हाँ कौन सी रहम करते हैं। आज की मुरली सुनी, हाँ सुनी, अच्छा तो आज बाबा ने कहा मैं आपको अतूट स्नेह देता हूं, ये रहम है, और बहिष्ठ की बीबी बनाता हूं, स्वर्ग के मालिक बनाता हूं। तो अपने को जगदम्बा शिव शक्ति समझकर सदैव चलना, और जितनी आप में ताकत भरती जाएंगी लोग भी आपको देवी के रूप में देखेंगे, आपका भविष्य रूप का उनको साक्षात्कार होगा। तो इस समाप्ति वर्ष में हमें बाप समान संपन्न संपूर्ण बनना है। तो जितना यहां से आप ये भर के जाएंगे और लक्ष्य लेके जाएंगे कि 6 मास में, अभी तो 6 मास भी नहीं रहे, 4 मास रहे, 4 मास में हमें इतना पावरफुल बनना है जो विनाश कभी भी हो। विनाश कब होगा, जब ब्राह्मण संपूर्ण बन जाए। आज बाबा ने कहा विनाश तब होगा जब नाटक पूरा होता हूं। तो हमें जब संपूर्ण बनना है, एवर रेडी बनना है, ऐसे नहीं सोचो पता नहीं बाबा तो 1936 से कहते हैं एक वर्ष बाकी है, एक वर्ष बाकी है, मरे जी रहो, समय थोड़ा है, समय थोड़ा है, तो इसलिए अलबेले होकर नहीं रहो, परंतु विनाश के पहले तैयार रहो, फिर कभी भी विनाश हो। हम जितना ज्यादा समय संपूर्ण होंगे तो क्या होगा, पोजीशन वहां भी हमको ज्यादा समय मिलेंगे राजा। लास्ट में तैयार होंगे तो लास्ट में राजा मिलेंगे, यदि अंत तक माया से लड़ते रहेंगे तो त्रेता में आएंगे चंद्रवंशी, लड़ने वाले राम के तरह चंद्रवंशी बनेंगे। इसलिए देखना है माया जीत बनना है। माया अनेक प्रकार से आएंगे, लोग क्या कहते हैं, घर वाले क्या गालियां देते हैं, समाज वाले क्या बोलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलते हैं, कईयों को पड़ोसी कहता है अच्छा सवेरे हुआ सफेद कपड़े पहनकर चल पड़ी ब्रह्मा कुमारियों के पास, बच्चों को नहीं देखती, घर वालों का नहीं सोचती, चल पड़ी। तो अड़ोसी पड़ोसी भी बोलेंगे तो घर वाले भी कहेंगे घर में भगवान को याद करो ना, क्यों जाती हो सेंटर पर रोज। तो कई बार हम सोचते हैं भाई घर में अशांति होती है चलो बैठ जाएं, अशांति होती है तो ठीक है बैठ जाओ, परंतु सवेरे नहीं जाओ तो दिन में जाओ, दिन में नहीं जा सको शाम को जाओ, पति घर में नहीं है उस समय जाओ, पर सेंटर पर दिन में एक बार जरूर जाना है। और बाबा ने जो जो बात बाबा कहते हैं उसका पालन करना है। तो जितना नियमों का मर्यादाओं का पालन करेंगे योग भी ठीक रहेगा। यदि मित्र संबंधी के पास गए और वो कहते हैं मैं तो बहुत प्यार से वेजिटेरियन खाना बनाया है, आपके कारण प्याज लहसुन भी नहीं उसमें डाला है, तो क्या होता है, जो थोड़े कमजोर होते हैं कहते हैं भाई प्यार से बनाया है क्यों ना खा ले, और जो घर में पकाने के सुस्त होंगे वो कहेंगे चलो बना बनाया खाना मिल गया। तो विदेश में भी लोग बहुत पक्के होते हैं, किसी के हाथ का खाते नहीं, अपनी माँ का भी हाथ का नहीं खाते। एक माता के दो बच्चे ज्ञान में थे, मतलब बच्चे तो 20-25 साल के, जब ज्ञान में आए तो 25-30 साल के थे, तो घर में जाते थे तो माँ का हाथ का खाना नहीं पकाते थे, खाते नहीं। माँ कहती थी भाई मैंने सारा बहुत साफ किया है तुम्हारे लिए, स्पेशल बर्तन में पेठे का सूप बनाया, तुमको बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत प्यार से बनाया। बच्चे ने कहा नहीं तुम्हारा लगाव का उसमें वाइब्रेशन है, मैं नहीं खाऊंगा। तो ऐसे पक्के बच्चे होते हैं वहां विदेश में, कोई कोई तो इतने पक्के होते हैं जो घर वालों का नहीं खाते हैं। और विदेश में इतना तो अच्छा है कि माँ बाप फोर्स नहीं करते हैं कि हमारा पकाया हुआ खाओ, लड़कों को भी फ्रीडम, जो तुमको बनाना है, जो खाना है पकाओ खाओ। इंडिया में तो बहुत मित्र संबंधियों के पास भी जाएंगे तो कहेंगे क्या हम अछूत है, क्यों नहीं हमारे हाथ का खाते, खास परिवार वाले के इतना साल आपको खिलाया अभी क्यों नहीं खाते हैं। तो इसलिए जितना नियम पर चलेंगे, अपने हाथ से बाबा की याद में पकाएंगे, बाबा की याद में खाएंगे, और पकाते समय भी घर वालों की याद ना आए कि इस लड़के को ये अच्छा लगता है, बेटी को ये अच्छा लगता है, इस लड़की को ये अच्छा लगता है, इसलिए ये बनाते हैं। नहीं, बाबा के लिए भोग बनाते हैं। बाबा को क्या अच्छा लगता है, दादी जान की तो क्या कहती है, बाबा को भोग लगाए बिना जो खाना खाते हैं चोर। भोग लगाओ फिर खाओ, खिलाने वाले को नहीं खिलाते हैं, तो खिलाने वाले को तो पहले याद करना चाहिए। तो जब ब्रह्मा भोजन बनाएंगे, बल घर में भी बनाएंगे अपना भोजन, पर ब्रह्मा भोजन शिव बाबा की याद में बनाएंगे तो ब्रह्मा भोजन हो जाएगा। तो जितना खाएंगे और घर वालों को खिलाएंगे तो उनकी बुद्धि भी बदलेंगी। विदेश की माताएं भी कहती हैं कि हम बच्चों को घर वालों को बहुत अच्छी रीति से खाना बना के देते हैं, फिर उसको मीठ की याद ही नहीं आती, यहां से सीख कर जाते हैं। हमारे भाई तो किचन में जाते थे और गुलाब जामुन जलेबी सब सीख गए। आजकल तो क्या है, सब आटा मिक्स तैयार आता है, सहज हो जाता है, कोई भी जलेबी बना लेता है, गुलाब जामुन बना देता है, ढोकरा बना लेता है, जो भी बनाना है आजकल सहज हो गया। पर उन दिनों में वो लोग सीख कर जाते थे, क्योंकि खाने का भी शौक होता है तो पकाना भी सीख जाते हैं। और किचन में उनके देखो तो 15-20 कुक बुक होंगे, वेजिटेरियन खाना कैसे बनाना है, बस बुक खोली, बिस्किट बनाया, केक बनाया, ब्रेड बनाया, सब बनाना सीख गए। तो क्या है कि सुस्ती नहीं करनी है उसमें, खान पीन शुद्ध हो, दृष्टि हमारी भाई भाई की हो। जितना अपने पर ध्यान देंगे अपने को फायदा। हमें बुद्धि में होना चाहिए, हम जो कर रहे हैं हमारे फायदे के लिए, बाबा हमें जो शिक्षा देते हैं हमारे फायदे के लिए। बाबा को याद करेंगे, बाबा को कुछ फायदा नहीं होगा, बाबा को नशा नहीं चलेगा कि मेरे मुझे को इतने को लोग याद करते, हमें फायदा कि हमारे भी कर्म विनाश हो, हमारी आयु बढ़ेंगी और हम ऐसे सुख शांति आनंद के वाइब्रेशन फैला सकेंगे। तो स्वर्ग की स्थापना में हम जितना सहयोग देंगे उतना वहां हमारा पद होगा। इसलिए बाबा कहते हैं प्यार से सेवा करो, अपनी उन्नति का ख्याल रखते चलो, मुझे क्या करना, औरों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी चिंता ना हो। चाहे माँ बाप हो चाहे टीचर हो, बोझा नहीं उठाना है कि मुझे उनको सुधारना है, ज्ञानी बनाना है। चिंता न, बाबा करण करावा नहार है, हम पुरुषार्थ करते रहे। उनका जब ड्रामा में पार्ट होगा आ जाएंगे। तो ये शुभ भावना रखनी है, चाहे अपने हैं चाहे पराए हैं। तो जितना हमारा शुद्ध रूहानी प्यार होगा हमारी भावना भी शुद्ध रहेंगी और नेगेटिव भाव भी नहीं उत्पन्न होगा। इसलिए जो बाबा की पहली पहली शिक्षा है, देह का भान छोड़ो मुझे याद करो, ये पहली पहली शिक्षा पूरा ध्यान में रखनी है। और पहली पहली आज्ञा है पवित्र बनो योगी बनो। तो जितना उस पर ध्यान रखेंगे हम बन जाएंगे। ओम शांति।
आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स। बहुत ही प्रैक्टिकल अपने अनुभवों से हम सभी को प्रेरणाएं दी हैं कि ये चार दिन में हमें क्या पुरुषार्थ करना है। ठीक है,
ज्ञान का मंथन करने के लिए सुंदर ये अवसर मिला, मौन तपस्या भट्टी में होना है सबका भला। निर्मल निश्चल दिल वाले जैसे दीदी निर्मला, मौन तपस्या भट्टी में सबका होना है भला, सबका होना है भला। भट्टी करने आए पुलकित है सबका तन मन, बाबा बाहें पसारे करते आप सबका अभिनंदन। रहम दिल बाबा के लाडले पहुंच गए देखो मधुबन, बाबा बाहें पसारे करते आप सबका अभिनंदन। मधुबन भट्टी करने आए हो, जिंदाबाद है हरियाणा के दिल, वाह जिंद जिंदाबाद ये हरियाणा के दिल। दिल वाले बाबा के भी जीत लिया है दिल, दिल वाले बाबा का भी ये जीत लिया है दिल, हाँ जीत लिया है दिल। दिल वाले बाबा के आ गए हो, दिल वाले बाबा के आए प्यारे रूहानी चंदन, बाबा बाहें पसारे करते आप सबका अभिनंदन। मधुबन भट्टी करने आए हो, Thank you. की याद में हरदम खोए रहना, सीधे बाबा की याद में हरदम खोए रहना। मधुबन पावन भूमि में शक्तिशाली बन जाना, मधुबन पावन भूमि में शक्तिशाली बन जाना, शक्तिशाली बन जाना। मौन तपस्या भक्ति करके हो, मौन तपस्या भक्ति करके बनना है पावन पावन। बाबा बाहें पसारे करते आप सबका अभिनंदन, मधुबन भट्टी करने आए हो।
आज बाबा ने मुरली में कहा था, बाबा कौन है? मीठी टेकरी। हम सबको क्या बनाना है? जैसे दीदी ने कहा, वही की दीदी।
मीठी सकरिन प्यारे बाबा कितना प्यार लुटाता, मीठी सकरिन प्यारे बाबा कितना प्यार लुटाता। पवित्र प्यार की दुनिया का वो मालिक हमें बनाता, पवित्र प्यार की दुनिया का वो मालिक हमें बनाता, वो मालिक हमें बनाता। वाह रे बाबा वाह दीदिया, वाह रे बाबा वाह दीदिया, गुनगुनाता है मन मधुबन। बाबा बाहें पसारे करते आप सबका अभिनंदन, मधुबन भट्टी करने आए पुलकित है सबका तन मन। बाबा बाहें पसारे करते आप सबका अभिनंदन, रहीम दिल बाबा के लाडले देखो पहुँच गए मधुबन। बाबा बाहें पसारे करते आप सबका अभिनंदन, मधुबन भट्टी करने आए हो।
बहुत बहुत धन्यवाद हल्दर भाई का। खास हॉस्पिटल के अभी वर्किंग टाइम है, समय निकाल करके आप सबका स्वागत करने के लिए पहुंचे, विशेष धन्यवाद है।